नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विदुर जी महाराज इतनी इतनी ज्ञान की बात कहते हैं, धृतराष्ट्र की क्यों नहीं इस बात ठहरती कि पुत्र का मोह है? वो तो है, लेकिन इतना सत्संग किया, कुछ तो कहना चाहिए कि अब मेरे मोह पर असर पड़ा है। इतनी बात सुनकर के भी असर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि उसने पहले से ही अपने एक मन में सिद्धांत बना लिया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भाग्य से कर रहा हूं, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसको कौन मेट सकता है। ऐसी अंदर से धारणा बनाकर सत्संग करते हैं, अथवा कोई दूसरा आदमी कैसी गलत धारणा बना करके सत्संग में बैठता है, फिर उसको कितनी सत्संग की बात सुनाओ वो ठहरती नहीं है। सत्संग ऐसे सुनना चाहिए मन को खाली करके। खाली क्या कि अपना कोई मंतव्य आग्रह सिद्धांत इसकी पकड़ नहीं, और फिर सुना जाए सत्संग, एक एक बात सुनी जाए, वो असर करती है। तो अपने लोगों को इस प्रसंग में क्या सीखना चाहिए? लोग तो कह देते हैं कि धृतराष्ट्र इतने बुद्धिमान थे, इतने बड़े राजा थे, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े संत आते थे, वो भी सुधार नहीं कर सके, हमारा सुधार कैसे होगा? ऐसे प्रसंगों से निराश नहीं होना चाहिए। शिक्षा ये लेनी चाहिए कि सत्संग में अपनी कोई धारणा मत बनाओ। कई कह देते हैं, सुनो चाहे कितना ही, मारो मन तो बदले को नहीं, ऐसा भाव नहीं बनाना चाहिए। इसी भाव के कारण से अनर्थ होता है। जैसे कोई कचरा पड़ा हो, उसमें हम जो भी चीज डालेंगे, लड्डू डालेंगे, पेड़ा डालेंगे, गुलाब जामुन डालूंगे, सब कचरा हो जाएगा वो, क्योंकि कचरे में जा रही है ना चीजें, इसलिए कचरा हो जाएगा। इसी प्रकार से मन में जो बुरा भाव होता है, शास्त्र विपरीत भाव होता है, सिद्धांत विरुद्ध भाव होता है, वो कचरा है, उसमें अब जो भी चीज वो कचरा ही बनता है। धृतराष्ट्र ने कहा था कि विदुर जी, तुम जिस प्रकार का उपदेश करते हो वो तो बहुत ठीक है, तुम मुझसे कहते हो मेरा भी ऐसा ही विचार है, मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी बुद्धि रखता हूं, लेकिन दुर्योधन से मिलने पर मेरी बुद्धि पलट खा जाती है, क्योंकि प्रारब्ध का उल्लंघन कोई प्राणी कर नहीं सकता। ये प्रारब्ध को बीच में ले आया। प्रारब्ध का काम परिस्थिति बनाने का है, प्रारब्ध का काम हमारे काम को रोकने का या हमारे कर्तव्य को बढ़ाने का इसमें नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा विवेक प्रधान होता है, समझ प्रधान होती है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें भाग्य की प्रधानता होती है। उल्टा पुल्टा समझ गया, अब सत्संग करता है साहब, धारणा बना ली, सत्संग करता है। और विदुर तुमको कुछ कहना हो तो कह दो, सुनने की बड़ी इच्छा है। तब कहा कि सनत सुजात करके एक ब्रह्मा जी के प्राचीन पुत्र ऋषि ब्रह्मा जी के, उन्होंने कहा था कि मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं, अब वो सनत सुजाती आ जाए तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम मुझे ब्रह्म तत्व बताओ का, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्रह्म तत्व कैसे बताऊं, मेरा जन्म शूद्रा से हुआ है और मुझे ये ब्रह्म तत्व बताने का अधिकार नहीं है, तो पर अब सनत सुजाती को कहां से लावे भाई। तो वैशंपायन जी ने कहा कि विदुर जी ने उनको याद किया और वो प्रकट हो गए, कह लो साहब सनत सुजाती जी आ गए, बड़ा उनका पूजन किया। फिर धृतराष्ट्र बोले, हे सनत सुजात जी, मैं यह सुना करता हूं कि आप ये कहा करते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, जबकि हमने सुना है कि ब्रह्मलोक से लेकर कीट पतंग तक, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, सारे प्राणी मौत के प्रवाह में दौड़े जाते हैं, सब मर रहे हैं, आप कहते हैं मृत्यु नाम की चीज नहीं है, और लोग मृत्यु से बचने के लिए जाने कितना कितना अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो मृत्यु से बचने के लिए करते हैं, तो मृत्यु है तब न बचा जाता है, आप कहते हैं मृत्यु है नहीं, दोनों में से कौन सी बात सच्ची है। सनत सुजात ने कहा कि राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं, मृत्यु है और वो कर्म से दूर होती है, एक तो ये पक्ष है, और मृत्यु है ही नहीं, क्या दूर करोगे और क्या नजदीक लाओगे, ये दूसरा पक्ष है। अब आप देखो, धृतराष्ट्र ने मृत्यु है नहीं क्यों किया प्रश्न, ये इसलिए किया कि पांडव लोग मेरे बेटों को अब मारेंगे बुरी तरह से, तो क्या ऐसा उपाय हो कि जिससे मेरे बेटे को मरना न पड़े, इस मूल में उसके ये प्रश्न है। कि दार्शनिक होकर के नहीं पूछा है, कोई बड़ा भारी साधन भजन किया हो, आत्म तत्व में स्थित हो गया हो, फिर कहता हो कि साहब मृत्यु नाम की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखते कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरे बेटे मरे नहीं, ये भावना थी उसके। तो सनत सुजाती ने कहा कि देखो भाई, मृत्यु होती भी है, कर्म से बचा भी जाता है, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं भी है, दोनों ही बात है। लेकिन धृतराष्ट्र, तुम इस बात को ध्यान से सुनो, संदेह मत करना, दोनों पहलू समझने लायक हैं। कुछ विद्वानों ने मोहवश मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना है कि प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद करते हैं ना, ये प्रमाद, ये मृत्यु है, और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के कारण मनुष्य आश्रित संपत्ति वाले मनुष्यों से मिलकर मृत्यु से पराजित हुए हैं, और अप्रमाद से देवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो गए। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई स्वरूप देखने में नहीं आता। मृत्यु का क्या स्वरूप है भाई, आज भी रखन मौत आ गई तो काय पतो चाले। सिंह के समान मृत्यु आती नहीं है, प्राणियों का भक्षण नहीं करती है, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु मानते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं, वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर हैं। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता वह कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन इंद्रियां और प्राण भी साथ देते हैं, साथ ही चले जाते हैं। देखो मरे जना का ही वह शरीर में सु प्राण जावे, यूं सांस सारा ज्यादा वो प्राण जाता है, प्राण को अनुभव है, प्राण निकल गया, प्राण के साथ में इंद्रियां चली जाती हैं, मन चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, ये प्राणों के अंदर रहते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु एक नाम है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्गादि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। वहां भी मृत्यु तैयार है थोड़े दिनों बाद। देहाभिमानी जीव परमात्म तत्व का साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस प्रकार से जो विषयों के प्रति झुकाव है वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है और झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति भी होनी स्वाभाविक है। अंदर राग रहेगा तो इधर ही दौड़ेगा विषयों में। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण में ज्ञान शक्ति क्षीण हो गई वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मनी मन उसका आस्वादन करता है। देखो एक तो होता है विषयों का सेवन और एक होता है विषयों का ध्यान। विषयों का ध्यान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, विषयों का सेवन इतना खतरनाक नहीं होता। पहले तो विषयों का ध्यान विषयों का चिंतन ही लोगों को मार डालता है, क्योंकि विषयों का चिंतन करने से काम क्रोध लोभ आदि पैदा होते हैं और वो किसी को छोड़ते नहीं। इस प्रकार ये विषय चिंतन काम क्रोध लोभ आदि ही विवेकहीन मनुष्य को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। विषयों का चिंतन होने लगे ना उसी समय विषयों का चिंतन ही न करे, चिंतन करने पर कामना पैदा होती उसको नष्ट कर डाले। इस प्रकार का जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको मृत्यु के भांति मृत्यु नहीं मारती जैसे औरों को मारती वैसे नहीं, अर्थात वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ नष्ट हो जाता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है वो सबको नष्ट कर देता है। ये कामनाएं समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देता है। कामना दुखदायी होती है। जैसे मतवाले पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उसकी ओर दौड़ते रहते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं होती, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनके के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। एक कागज रोई कोई बड़ा देवे सिंह, अजायब घर में मिट्टी रा सिंह और बड़ा बड़ा बनावे पत्थर का आ रही हूं, तो बच्चा भी मुंडा में जावे और खेल आई। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष होता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वो कागज के बनाए हुए सिंह के समान उस मृत्यु के अंदर खेलते रहते हैं और उनको कोई डर ही नहीं लगता है मृत्यु का। इस काम की आयु नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। कामना का त्याग करने से पहले चिंतन का त्याग करो, क्योंकि चिंतन के बिना कामना पैदा नहीं होती है। राजन, ये जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है, वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहां वेद उन्हीं को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों नहीं लेता है, माने जानते हुए भी आदमी अच्छा काम क्यों नहीं करता है। समझ गए ना इस प्रश्न का अर्थ? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं जो पुत्र मोह में पड़ा हुआ गलत काम करता हूं, वो क्यों करता हूं? धृतराष्ट्र पूछता है। सनत सुजात ने कहा कि अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करता है। वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन बताए हैं, परंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो ज्ञान मार्ग के द्वारा सभी मार्गों का बोध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। तो तुम निष्काम थोड़ा ही हो, इसलिए तुम बात तो जानते हो, परंतु उस बात को अपने व्यवहार में नहीं लाते हो। धृतराष्ट्र बोले, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है? परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट होता है, तो उनको प्रकट करने के लिए कौन प्रेरणा देता है? उनके ऊपर कौन मालिक है? परमात्मा पर। अथवा इस संसार को परमात्मा के रूप में आने की क्यों आवश्यकता हुई, और ऐसा बनने पर उसको क्या सुख मिला, ये मुझे बताओ। सनत सुजाति ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं, उसके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है, और उसे स्वीकार कर लेने से दोष पैदा होता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीव का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती, और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। प्रश्न यह है कि भगवान संसार को क्यों पैदा करते हैं? उत्तर ये देना चाहते हैं कि ये संसार माया के कारण से दिखता है, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। काला चश्मा पहनोगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा पीला देखेगा, पीलिए के बीमार को सफेद चीज भी पीली दिखाई देती है। ऐसे ही है तो परमात्मा, हमको संसार दिखता है। यह जो दृश्यमान जगत है वो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा नित्य है और वो माया के योग से ही संसार के रूप में दिखता है। माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराष्ट्र ने पूछा, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते और कुछ लोग उसका आचरण करते हैं, अतः मैं पूछता हूं कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है? पाप करने से धर्म नष्ट होता है या धर्म करने से पाप नष्ट होता है? प्रबल कौन है इनमें? यदि धर्म करने से पाप नष्ट हो जाता है तो धर्म बड़ा हुआ, और पाप कर्म धर्म को नष्ट कर देता है तो धर्म बड़ा हुआ, पाप बड़ा हुआ। देखो, ये अंधा यूं ही प्रश्न नहीं कर रहा है, ये वही बात बताना चाह रहा है कि मैं जो अभी पाप कर रहा हूं तो ये पाप करना, ये जो हो रहा है तो मेरे कोई धर्म नष्ट कर दिया इसलिए पाप हो रहा है, और मेरे पाप है वो मुझे धर्म में लगने नहीं देते क्योंकि धर्म नष्ट हो गया। धर्म पाप को नष्ट कर देता है या धर्म ने और या पाप धर्म को नष्ट करता है? सनत सुजात ने कहा, राजन खूब गहराई से विचार करो, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और इन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। तुम कहते हो कि धर्म है वो पाप को नष्ट करता है या पाप धर्म को नष्ट करता है, वो कहते हैं तुम तत्व में स्थित हो जाओ, पाप और पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। पहले सूर्योदय होता है कि पहले अंधकार का नाश होता है? कौन क्या कहे, सूर्य उदित होने पर अंधकार का नाश करता है क्या, या अंधकार का नाश होने के बाद सूर्योदय होता है क्या? क्या ऐसी बात तो नहीं है, ये तो एक साथ सा होता है। ऐसे ही परमात्म तत्व का अनुभव होने पर पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य को प्राप्त होता है, कभी प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल है, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म लेता मरता रहता है। किंतु कर्म के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहां ही नाश कर देता है। इस प्रकार पाप और धर्म में धर्म बलवान है, इसलिए आचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फल स्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है, उनका क्रम बताओ कि इस धर्म से ये लोग, इस धर्म से ये लोग। तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष का सुख है उसका भी निरूपण करो। मैं आपसे सकाम कर्म की बात नहीं करता हूं। सनत सुजात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लाग डांट रहती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रम धर्म में स्पर्धा है उनके लिए ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। निष्काम भाव से करें तो ब्रह्मलोक में और सकाम भाव से करे तो स्वर्ग लोक में। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्णाश्रम का अभिमान रखने के कारण जो बहिर्मुख है उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से श्रौत कर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ मानना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहां ब्रह्मवेत्ता सन्यासी के योग्य अन्नपान आदि की अधिकता मालूम पड़े उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं कि यहां खूब पानी है, जल है, भिक्षा है, वहां ज्यादा रहो, भूख प्यास अपने को कष्ट न पहुंचाए। किंतु जहां अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त होता है, वहां रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वह वही पुरुष श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। कहीं भी जाओ अपने आप को श्रेष्ठ प्रकाशित मत करो, दुनिया से उल्टी बात है भाई। संसार के लोग कहते हैं कि आपके ऊपर ये दोष लगाए, आप लांछन लगाए, आप इसकी सफाई दो। ये सरकार भी कहती है और भी कहते हैं, कोई लांछन लगे तो आप पर ये लांछन है, इसकी क्या सफाई देते हो। संत कहते हैं सफाई देनी नहीं चाहिए। जो किसी की आत्म प्रशंसा करते थे जलता नहीं, जो ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग करता नहीं, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। ऐसे आदमी का धन खा लिया करो, अन्न खा लिया करो, धन नहीं अन्न। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पांडित्य का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले होते हैं, उल्टी खाते हैं। और इसी से उनकी सदा ही अवनति होती रहती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयास करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। कुटुंबी जनों को भी मत बताओ कि हम क्या भजन करते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, कितना जप करते हैं, नहीं बताना चाहिए। इसलिए उपयुक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी ब्रह्म भाव को देखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य चिन्ह रहित अविचल शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका अधःपतन करना चाहेगा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है वह आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो अपने आत्मा की हत्या करता है उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं और दान लेता नहीं, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी देवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष और निर्भय है। उन्हें साक्षात ब्रह्म की मूर्ति समझनी चाहिए। यदि कोई इस लोक में अभीष्ट सिद्धि करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो वह ब्रह्म वेत्ता के समान है, क्योंकि वह तो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में सम्माननीय है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो आदर दे रहे। महाराज जी कहा करते थे ना कि आप हमारी प्रशंसा करते हो, इसका मतलब आप प्रशंसनीय हो, ये आपने आपकी प्रशंसा की है। परंतु जो इस संसार में अधर्म में निपुण है, छल कपट में चतुर है और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले वे मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का कभी आदर नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते। मान और मौन, मान भी हो जाए वो आदमी चुप रह जाए, ऐसा नहीं होता। मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में सुख मिलता है। ज्ञानीजन इस बात को जानते हैं। लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण करने में लुटेरे के समान बाधा डालती है। कौन? लक्ष्मी। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहां उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बताते हैं जो मोह को जगाने वाले नहीं हैं तथा जिनकी कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। धृतराष्ट्र बोले, वो मौन किस नाम का है? मौन किसे कहते हैं? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दोनों में से बड़ा मौन कौन सा है? यहां मौन भाव का वर्णन कीजिए महाराज। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? क्या संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहां मन के सहित वाणी रूप भेद नहीं पहुंचते उस परमात्मा का नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप भी है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहां प्रादुर्भाव है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाशित होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है फिर भी पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है कि नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता हूं, सत्य सत्य बात कहता हूं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी को उसके कारण कर्म से रक्षा नहीं कर पाते। जैसे पंख निकलने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंत में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आ रहा है? माने धर्म ही यदि पवित्र करने वाला हो तो फिर वेद वेत्ता लोग वेद क्यों पढ़ते हैं और यो क्यों कहते हैं कि हमने वेदाध्ययन कर लिया और हम शुद्ध हो गए? सनत सुजाती ने कहा, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद इत्यादि अच्छी तरह निर्देश करते हैं। किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया गया है। उसी की प्राप्ति के लिए वेदों में कृच्छ्रायण, तप, यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञ के द्वारा उस क्षत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर इस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह सच्चिदानंद घन स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है। तथा भोग समाप्त होने पर पुनः संसार में भटकता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। ये सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थित रहने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के लिए तो यही ठीक है, उन्हें यही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो गया। ये बात बिल्कुल यथार्थ है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की सिद्ध कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे हो जाती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सके। एक ही तपस्या है, वो कभी तो वृद्धि का कारण और कभी ह्रास का कारण, ऐसा क्यों बनता है? सनत सुजाती ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता उसे विशुद्ध तप कहते हैं। किंतु जब उस तप में कामना या विकार रूप होता है तो वह समृद्ध हो जाता है। तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो वह सब तपस्या मूलक तपस्या से ही प्राप्त होने वाला है। वेदवेत्ता विद्वान इस तप से ही परम अमृत को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष है उन्हें बताइए जिससे मैं सनातन धर्म की गोपनीय तत्व को बात जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्र में प्रसिद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्प्रिया, ईर्ष्या और निंदा मनुष्यों में रहने वाले 12 दोष सदा ही मनुष्यों के पास रहेंगे। जो व्याध मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्य का छिद्र देखकर उस पर आक्रमण करते रहते हैं। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा न करने वाले लोग पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी वे नीडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संसार के भोगों में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कारुणिक और अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी, ये सात और पहले के छह कुल मिलाकर 13 मनुष्य नृशंस वर्ग मारे क्रूर समुदाय में कहे जाते हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष नहीं देखना, यज्ञ करना, दान, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर लेता है। जो इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी युक्त है उसके पास कभी सभी तरह का धन है ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो मनीषी ब्राह्मण है वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। दम 18 गुणों वाला है। निम्नांकित 18 दोषों को त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री को देखकर दुर्भाव पैदा होना, सदा धनोपार्जन में ही लगा रहना, नाना प्रकार के विषयों की इच्छा करना, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, ये 18 दोष हैं। इनसे जो मुक्त होता है उसी को ही सत्पुरुष जितेंद्रिय कहते हैं। मद में भी 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपरीत सूचित किए गए वे ही मद के दोष हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है और 6 प्रकार का त्याग बहुत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात कामना का त्याग बहुत कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है यदि कामना को जीत लिया जाए। कामना का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। पहला त्याग, लक्ष्मी को पाकर हर्षित नहीं होना, पहला त्याग। यज्ञ, होम आदि में तथा कुएं, तालाब, बगीचे बनाने में धन खर्च करना, ये दूसरा त्याग। सदा वैराग्य से युक्त रहकर कामना का त्याग, ये तीसरा त्याग। तथा ऐसे त्यागी जो सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, ये तीसरा त्याग। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वो स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वो स्वेच्छापूर्वक इनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं आती। लोग कहते हैं खूब धन इकट्ठा था फिर मैं कई इच्छा नहीं करा, असंभव है। तथा कामना की पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी कामना का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, उस दुख से ग्लानि नहीं उठानी चाहिए। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा नहीं करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट पदार्थ स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना न करें, ये पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करें, ये छठा त्याग है। ये छह प्रकार का त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी आठ गुण हैं: सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आठ गुण आते हैं। ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए, उनको सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। प्रमाद के भी 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। 5 इंद्रिया और 6 मन, इनको अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो यही प्रमाद विषयक दोष है। और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, ये 2 दोष और हो गए। ये 8 दोष है। भविष्य की चिंता मत, भविष्य की आशा मत करो, भूतकाल की चिंता मत करो। क्या करें, पहले बहुत पैसा था, अब हमारे हाथ से पैसा चला गया, बहुत बड़ा अधिकार था, अधिकार चला गया। एक तो इसकी मत करो और एक भविष्य की आशा मत करो। और 6 है ही ये, इन 5 इंद्रियां और 6 मन। तुम सत्य स्वरूप हो, सत्य में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहां तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त मानना चाहिए। ऐसे पुरुष का तप सत्य, ऐसे मनुष्यों का तप और व्रत का आचरण विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा पुरुष विशुद्ध तप और अत्यंत समृद्ध होता है। तुमने जो मुझसे पूछा वो मैंने संक्षेप में बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला है तथा पापहारी तथा परम मित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे सनत सुजात जी, इतिहास पुराण इनमें पांचवा, इतिहास पुराण इनमें पांचवा है। उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। देखो, एक तो होता है द्विवेदी, एक होता है त्रिवेदी, एक होता है चतुर्वेदी, एक एक पंचवेदी। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार द्विवेदी और एक वेदी तथा अनिरिच कहलाते हैं। और जिन्होंने इतिहास पुराण आदि पढ़ लिया है वे पंचवेदी कहलाते हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, एक ही वेद को न जानने के कारण बहुत से वेद कर दिए गए। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई बिरला ही स्थिर होता है। जो स्थिर होता है वही ब्राह्मण मानने योग्य है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर जो कुछ लोग मैं विद्वान हूं ऐसा मानने लगते हैं, फिर दान, अध्ययन, यज्ञ आदि कर्मों में लौकिक व पारलौकिक फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है, वे वास्तव में सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो जाते हैं। सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी की क्रिया द्वारा संपादित होता है। पुरुष संकल्प मय है और वह अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त हुए लोकों का अधिष्ठाता होता है, किंतु जब तक संकल्प शांत न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म से जुड़े रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादेशे इस धातु से बना है। सत्पुरुष के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है, इसलिए ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी कहते हैं, इसलिए हे क्षत्रिय, केवल बातें बनाने से किसी को ब्राह्मण मत मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी अलग नहीं होता उसी को ब्राह्मण समझना चाहिए। अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिनका गान किया है वे ही छंद वेद है, किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्म तत्व के साक्षात्कार को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं है। नरश्रेष्ठ उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से ही छंद स्थित है, इसलिए इनका अध्ययन करके वेदवेत्ता आर्यजन वेद परमात्मा के तत्व को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाराज आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। हे कुमार, मेरा तो ये कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। तुमने जो उपदेश दिया है ब्रह्म संबंधी उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है, और आप दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सबसे दुर्लभ विषय क्या है? सनक सुजात ने कहा, राजन तुम जो मुझसे प्रश्न करते हो अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, तो इस प्रकार जल्दीबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय होने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या। बुद्धि इंद्रिया तो मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि में सब वृत्तियों का निरोध कर जाए हो जाए, एक मात्र परमात्मा ही रह जाए, उसका नाम ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है उस कार्य के समय में भी जो आत्मा में स्थिति रहती है उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने की बात कह रहे हैं तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व का कैसे जान सकेंगे।